श्री चैतन्य चरतामृत मध्य लीला अध्याय चार शीर्षक श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति पयार संख्या 78 और 79। तो 78 का अर्थ इस प्रकार से है, यह अनुभव कैले माधव गोसाई तारठाए गोपाले रुकान की छुनाए। माधवेंद्रपुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिए जाने पर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा, भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता। फिर अभी आज का जो प्यार है वो इस प्रकार दोहरा सकते हैं। एक दिनेर उद्योग ऐछे महोत्सव कैला गोपाल प्रभावे हय अन्य ना जानिला। एक दिनेर उद्योग ऐछे महोत्सव कैला गोपाल प्रभावे हय अन्य न जानिला। एक दिन उद्योगे अच्छे महोत्सव कैला गोपाल प्रभावे हय अन्य न जानिला। इसका अनुवाद इस प्रकार से, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। यह अद्भुत उत्सव तथा श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों को एक ही दिन रखा गया था। यह सब गोपाल की शक्ति से ही संपन्न हो सका, इसे भक्त के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो सब स्टोरी तो बहुत फेमस है माधवेंद्रपुरी जी की। अभी कुछ समय पहले हमने चंदन यात्रा उत्सव सब भक्तों ने मनाया था और माधवेंद्रपुरी पाद की महिमा सब जानते हैं, खीरचोर गोपीनाथ और ये चंदन यात्रा का जो उत्सव है और जो श्रीनाथ जी के विग्रह हैं उन सब की स्थापना। तो दो उत्सव एक साथ मनाए गए, पहला तो गोपाल जी को निकाला गया और उसके बाद उन्हें अन्नकूट व्यंजन जो है बहुत सारे अनेक प्रकार के भोग लगाए गए और साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा भी की गई। तो ये दोनों कह रहे हैं एक ही दिन संपन्न किए गए। गोविंद कुंड से बहुत सारे घड़े जल के लाके गोपाल जी का अभिषेक, तो एक ही दिन के अंदर पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है ऐसा करके। तो ये बता रहे हैं और कि ये केवल गोपाल की शक्ति से ही संपन्न हो पाया और भक्तों के अलावा इसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और इसकी पुष्टि पिछले प्यार में किया गया है कि जब गोपाल जी को जो भोग लगाते थे तो माधवेंद्रपुरी समझ जाते थे कि गोपाल सब व्यंजन खा रहे हैं और दोबारा वो जो जितने पात्र हैं वो दोबारा अपने आप भर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी समझ गए किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि भगवान के भक्तों से कुछ नहीं छुपा रहा था। तो इसी प्रकार ये दोनों गोपाल जी की शक्ति से ही संभव हो पाया। और प्रभुपाद जिसका बहुत ही इंटेंस परपोर्ट बोल रहे हैं एंड इट रिक्वायर्स सम वेरी इंटेंस डिवोटी टू स्पीक ऑन दिस परपोर्ट, वेरी डिफिकल्ट परपोर्ट और बहुत रोमांचकारी परपोर्ट भी। आप ध्यानपूर्वक सुनेगा तात्पर्य जो है प्रभुपाद कह रहे हैं, कुछ ही काल में ब्रैकेट में लिखा है 5 साल के भीतर कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल गया है और संसारी लोगों को यह देखकर हैरानगी है, आश्चर्य है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जानते हैं कि सब कुछ संभव है। अर्थात लगभग 72-73 में प्रभुपाद ने इस मध्य लीला का ट्रांसलेशन किया गया चैतन्य चरतामृत की। तो प्रभुपाद कह रहे हैं 5 साल के भीतर इस कृष्ण भावना आंदोलन सारे विश्व में फैल गया है, तो फिर कृष्ण को 5 वर्ष क्यों लगे। प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं, वे तो 5 ही दिनों में अपने नाम तथा यश को सारे विश्व में फैला सकते हैं। जिन लोगों को कृष्ण पर श्रद्धा तथा भक्ति है वे समझ सकते हैं कि ये बातें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कितनी विचित्र ढंग से फलित होती हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। प्रॉपर लिखे वी आर सिंपली इंस्ट्रूमेंट्स। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन 18 दिनों के भीतर ही विजयी हुए क्योंकि उन पर कृष्ण की कृपा थी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवानी तिर मतिर ममा। जहां भी योगेश्वर कृष्ण रहते हैं और जहां भी परम धनुर्धर अर्जुन हैं वहीं ऐश्वर्य विजय अद्वितीय शक्ति तथा नैतिकता रहती है, ये मेरा मत है। गीता का आखिरी श्लोक संजय बोल रहे हैं, यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक कृष्ण के निष्ठावान भक्त हों तो कृष्ण सदैव उनके साथ होंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु तथा अनुकूल रहते हैं। जिस तरह कृष्ण तथा अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी हुए थे, उसी तरह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी विजयी होगा। यदि हम भगवान के निष्ठावान भक्त बने रहेंगे और पूर्ववर्ती आचार्यों अर्थात षड् गोस्वामी तथा अन्य भगवत भक्तों के अनुसार सेवा करेंगे, जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे जनमे है यही अभिलाष। कृष्ण भावनामृत के भक्तों की यही आकांक्षा होनी चाहिए कि वे सदैव भक्तों की संगति में रहें, भक्त सनेवास। वे कृष्ण भावनामृत समिति या आंदोलन से बाहर नहीं जा सकते। संघ में रहते हुए हमें चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करके तथा उनके नाम और यश को विश्वभर में फैला करके पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करनी चाहिए। यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि यह कैसे होगा, इसे तो कृष्ण की कृपा से होना ही है। श्रील प्रभुपाद की। यह अद्भुत उत्सव एक दिनर उद्योगी ऐछे महोत्सव कैला गोपाल प्रभावे है अन्य न जानीला। यह अद्भुत उत्सव तथा श्री गोपाल जी के प्रतिष्ठा दोनों को एक दिन रखा गया था। यह सब गोपाल की शक्ति से ही संपन्न हो सका, इसे भक्त के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। आप सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सही भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए इस बहुत ही मुश्किल पर्पट पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और श्रील प्रभुपाद ने कोई खास फिलोसॉफिकल एनालिसिस नहीं किया इस पर्पट का, लेकिन अगर देखेंगे प्रभुपाद जी जो करंट वर्तमान सच्चाई है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार 5 वर्ष के भीतर अब सोचिए, एक 70 वर्ष का व्यक्ति 1965 में भारत से 40 रुपए लेके अमेरिका जाता है, उसको पता नहीं वहां पे जाके कहां रहना है, कौन उसके सगे संबंधी हैं, कुछ नहीं मालूम। 70 साल की उम्र है, पता नहीं अमेरिका पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। प्लेन से नहीं जा रहे, किंग फिशर या जेट एयरवेज से वो जा रहे हैं, कार्गो शिप से। 40 दिन लगे, 2 हार्ट अटैक बीच के अंदर, सी सिकनेस। उसके बाद वो अमेरिका जाते हैं, रहने का ठिकाना नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। और अमेरिका में उस समय हिप्पी मूवमेंट चल रहा है और वहां पे ये कहा जाता था, यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र से ऊपर है तो उसकी बात पे विश्वास मत करो, बिकॉज इज क्रेजी, वो सठिया गया है ना? कि 30 वर्ष की उम्र के बाद तो उस पर डोंट ट्रस्ट अ मैन अबव 30। प्रभुपाद यू नो वहां अमेरिका में ये बिलीफ था कॉमन। प्रभुपाद वॉज 70, मोर देन डबल। लेकिन प्रभुपाद अमेरिका गए और ये हिप्पी लोग जो कि बहुत ही रईस घरों से थे, और उनका दे वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बचपन से ही सारे ऐशोआराम उनके पास थे। 15-16 साल की उम्र तक आते आते तो वो सारे ऐशोआराम से ऊब गए थे बिल्कुल, ये उनकी हालत हो गई थी कि आगे क्या है उनके पास, तो आगे जाने कोई लक्ष्य नहीं था। तो सब उस समाज को छोड़ करके वो जो हिप्पी बन गए थे, हिप्पी अर्थात सड़क पे रहते थे, कई दिनों तक नहाते नहीं थे, पूरा दिन LSD मरीजुआना सब ड्रग्स लेकर के पड़े रहते थे और उनकी जिंदगी का और कोई लक्ष्य नहीं था। उनके माँ बाप ने सुधारने की कोशिश करी, फेलियर। पुलिस ने पनिशमेंट देके कुछ कंट्रोल करने की कोशिश किया, सॉरी। पुलिस डिपार्टमेंट, पेरेंट्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ऑल फेल्ड। बिल्कुल वहां परेशान थे लोग इस सभ्यता उस दौरान। वहां पे भारत से एक 70 साल का व्यक्ति जाता है, कुछ नहीं है उसके पास, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुछ नहीं, सिर्फ भागवतम। खाली उसके पास है तो जैसे प्रभुपाद खुद अपने शब्द में बता रहे हैं, भक्ति नाई वेदे नाई नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। जो प्रभुपाद के पास है वो है फेथ, कन्विक्शन, स्ट्रांग फेथ इन द पोटेंसी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और चैतन्य महाप्रभु, दृढ़ श्रद्धा अपने गुरु के शब्दों में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के अंदर पृथ्वी आछे आता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोरा नाम। आप रावत तो पूरा विश्वास था इस होली नेम के ऊपर कि भगवान के हरि नाम हरे नाम ही व केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरंधा। और प्रभुपाद जी के पास एक धन और था, वो 70 वर्ष के व्यक्ति के पास, वो था उनकी शुद्धता, प्यूरिटी। और उसके बाद प्रभुपाद एक पार्क में गए, बहुत सा स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन एक पार्क में गए। और प्रभुपाद क्या करने लगे, वहां पर कीर्तन करने लगे हरे कृष्ण महामंत्र का। उनका मृदंग नहीं था, करताल नहीं था, पुस्तकें के नाम पे केवल भागवतम का 1st कैंटो 3 वॉल्यूम्स थे और कुछ नहीं था। कोई मंदिर नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे, कुछ नहीं था, भारत की संस्कृति नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद जी वहां पर जाके जो है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे। 45 मिनट प्रभुपाद ने कीर्तन किया और जब आंखें खोली तो देखा कुछ युवक युवतियां वहां पर नृत्य कर रहे हैं, वहां पर खड़े हैं प्रभुपाद जी के पास और इस हरे कृष्ण महामंत्र जो है गा रहे हैं। एंड दे आर इंटरेस्टेड एंड दैट्स हाउ दिस इस्कॉन स्टडी बिगैन। ये इस्कॉन स्टडी की स्टार्टिंग एक पार्क के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति से 70 साल के, जिनके पास कुछ नहीं है। और यही प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम 5 ईयर्स। मेरे को लगता नहीं कोई भी ऐसी कंपनी होगी जिसकी ग्रोथ इतनी फास्ट हुई होगी। कोई भौतिक तुलना में देखा जाए 5 साल में तो कोई कंपनी भी पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलती है ना। ऐसी कंपनी जो केवल 40 रुपए से स्टार्ट हुई हो, मतलब बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज कोई भी नहीं फैल सकती जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई इंप्लॉयज ना हो। एंड मंडेन पीपल आर वेरी मच एस्टॉनिश्ड एट दिस। और जो भौतिकतावादी लोग हैं इसे बहुत आश्चर्यचकित हैं कि हो क्या रहा है। अब वास्तविकता में बात है, वी कैनॉट इमेजिन व्हाट वाज हैपनिंग इन अमेरिका एट दैट टाइम। हरे कृष्णा वर अ हाउस होल्ड नेम प्रैक्टिकली। प्रभुपाद जी के समय में हरे कृष्णा वाज रियली हाउस होल्ड नेम। आज तो हमें लगता होगा शायद पूरे विश्व में, भारत में भी फिर भी कई लोगों को इस्कॉन का नहीं पता होता, लेकिन उस समय हरे कृष्णा वॉज रियली अ हाउस होल्ड नेम इन अमेरिका। जैसे महाप्रभु के जाने के बाद उड़ीसा के अंदर हर घर घर में चैतन्य महाप्रभु को सब जानते थे, श्री चैतन्य कृष्ण कृष्ण चैतन्य। वैसे ही श्री प्रभुपाद जी के समय के अंदर जिस गति से बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जिस गति हरिनाम संकीर्तन मंदिर बन रहे थे, संकीर्तन निकाले जा रहे थे, जिस गति से लोग प्रचार कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स आ रहे थे, हरे कृष्णा तो रियली हाउस होल्ड नेम। और तभी भौतिकतावादी लोग आश्चर्यचकित होते थे, 5 साल में प्रभुपाद ने इतने सारे टीवी, बड़े बड़े चैनल में टीवी इंटरव्यूज, रेडियो इंटरव्यूज इत्यादि दिए हैं। इट वॉज रियली आश्चर्य है ना। और दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज नॉट ड्यू टू सम मिराकल्स। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज अ मिराकल। किसी को हो सकता है कोई जादू किया हुआ, प्रभुपाद जी के पास कोई जादू था जो उन्होंने किया होगा जिसकी वजह से यह इस्कॉन संस्था इस प्रकार से बनी है। ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिट संघ हरे कृष्ण आंदोलन ये अपने आप में एक जादू है। कैसा जादू है कि फौलाद जैसे हृदयों को बिलकमल जैसे सॉफ्ट हृदय का बनाने वाला। ऐसे तो कोई किसी डॉक्टर के पास किसी को मेडिसिन नहीं होगी कि कठोर कठोर हृदयों को जो है बिल्कुल कमल जैसा कोमल बनाने वाली। ऐसी कला तो, ऐसा आश्चर्य तो शायद ही कहीं होगा, है कि नहीं। ऐसा आश्चर्य केवल हम आध्यात्मिक जीवन में देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है एक शिकारी की, और वो शिकारी कितना क्रूर था कि पशुओं को मारता नहीं था पूरी तरीके से। क्या करता था वो, अधमरा करके छोड़ देता था उन्हें। और बहुत उसको आनंद आता था जब पशु तड़पते थे, ये उसको आनंद था, आप सोचिए। और आज के जमाने में ऐसे बहुत सारे शिकारी हैं, उनको बहुत मजा आता है जब वो पशुओं को काटते हैं स्लॉटर हाउसेस के अंदर, जब पक्षी तड़पते हैं उनको बहुत मजा आता है, आता था, है ना। और उनको कौन मिले शिकारी को, नारद मुनि। और नारद मुनि ने बोला, भाई आधा क्यों मार रहे हो, पूरा ही मार दो। शिकारी को लगा ये तो कोई भाई बंधु ही बोल रहे हैं, मारने की बात कर रहे, चलो ठीक है, नहीं तो शिकारी बोला तुम्हें ही मार दूंगा। नारद मुनि ने उसको क्या बोला बाद में कि भाई तुम पूरा ही मार दो, तो बोला क्यों, आधा मारने में क्या परेशानी है ना, ये जब तड़पते हैं तो मुझे बहुत आनंद होता है। और सोचिए क्या हृदय होगा उन्हें। और ये मृगारी कहता सब जानते हैं। बाद में क्या हुआ, जब नारद मुनि और पर्वत मुनि बाद में आते हैं तो वो प्रणाम करने से पहले उस जगह को साफ कर रहा है कि एक चींटी को भी नहीं मारे। दैट इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये है हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी जादू, कौन सी दवाई, कौन सा टॉनिक, कौन सा कफ सिरप, हार्ट सिरप, कौन सा इंजेक्शन,
कौन सी सर्जरी जो है हृदय को इस प्रकार से परिवर्तित कर सकती है। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के अंदर तीसरे अध्याय का भी आखिरी श्लोक और दूसरे अध्याय का भी आखिरी श्लोक में बहुत सुंदर बात बताई है उसके अंदर। जय श्री जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी की, जय श्री राधा अधिकम भगवान की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गौणता गिर श्री प्रभुपाद की, जय। उसमें तीसरे अध्याय के अंदर सुखदेव गोस्वामी ये बात बोल रहे हैं, तदश्म सारम हृदय बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्षः। बोल रहे हैं कि यदि कोई भगवान के नामों का जप करता है, तदश्म सारम हृदय बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय, ध्यानपूर्वक जप करने के बाद भी यदि किसी के नेत्र जलम गात्र रुहेशु हर्ष, शरीर में रोमांच नहीं हो रहा है, नेत्रों में अश्रु नहीं प्रभा नहीं हो रही है, तो क्या है? निश्चित रूप से वह हृदय क्या है? फौलाद का बना हुआ है, स्टील फ्रेम्ड हार्ट ऐसा करके। और सेकंड कैंटो के तात्पर्य, सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर के आखिरी में प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि कोई इस श्रवण कीर्तन की विधि का पालन करने के बाद भी उसके हृदय में परिवर्तन नहीं आता है तो निश्चित रूप से वह भक्त क्या है? ही इज अ सूडो डिवोटी। प्रभुपाद लिखते वंचित भक्त है इस प्रकार से ऐसे करके कि, और ऐसे कठोर हृदयों के अंदर प्रभुपाद जी ने जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए ऐसा करके। हम देखते हैं आज हमारे इस्कॉन के लीडर्स जो हैं उसी बैकग्राउंड से आए हैं, सोचिए एकदम। ऑफकोर्स वैष्णव के किसी जाति बुद्धि से हम भेद नहीं करना चाहिए। अभी आज सुबह इस ग्रेस मोहन गौर चंद्र मायापुर से आए तो बता रहे थे वहां पे एक बहुत सीनियर डिवोटी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इस ग्रेस जन्माष्टमी प्रभु, तो उन्होंने दो प्रवचन दिए वहां पे स्टूडेंट्स को। और उन्होंने स्टूडेंट से पूछा आपकी एज क्या है, स्टूडेंट ने बताया 20-21 साल। और जन्माष्टमी प्रभु ने बताया जब मैं 20 साल का था तो मैं कैसा था, बोले मैं इतने लंबे लंबे बड़े बाल थे, इतनी लंबी मेरी दाढ़ी थी और मैं हिप्पी था। पूरा अपना जब जीवन बताया तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। सो सी कि आज के जमाने व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रभुपाद ने क्या जादू किया, कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस क्या जादू है वो। जो व्यक्ति जो है दिन में तीन भारी जो है उनका डाइट ही हर समय होता था मांसाहार करना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत आसानी मिल जाएंगे, भारत में भी बहुत मिल जाएंगे जो सुबह शाम मीट ईटिंग के अलावा कुछ करते नहीं, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद में अब वो प्याज लहसुन की गंध से ही दूर भाग जाते हैं ऐसा है। अब बाहर के लोग हमें बोलते हैं कि आप लोगों ने इस्कॉन वालों ने क्या है, ब्रेन वॉश कर दिया है कि नहीं? बहुत बढ़िया, उस समय बोलते थे आज भी बोलते हैं। और खासकर कई बार जब लोग देखते हैं कि इस्कॉन संस्था में इतनी कम उम्र के अंदर लोगों ने जो है सब छोड़ करके और यहाँ पे भगवे वस्त्र धारण करके त्याग करने का जीवन का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको यही लगता है कि इन सब का जो है ब्रेन वॉश कर दिया है ऐसे करके। तो मैं यही सोच रहा था, प्रभुपाद ने इस ब्रेन वॉशिंग के बारे में बहुत सारे, जब भी प्रभुपाद का आता था अमेरिका में कोर्ट केसेस हुए कई सारे जहां पे जिन युवक युवतियों के इस्कॉन को ज्वाइन कर लेते थे तो उनके माँ बाप माता पिता ने कोर्ट में केस किया कि इस्कॉन इज द ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट। तो प्रभुपाद के बाद जब ये आया तो प्रभुपाद ने बोला यस यू नो इफ योर ब्रेन इज फिल्ड विद काउडंग वी हैव टू वॉश इट, व्हाट कैन यू डू, अगर आपके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है तो हमें धोना ही पड़ेगा उसे, है ना। तो ब्रेन वॉशिंग भी जो है वास्तविकता में एक आश्चर्य है, जादू है, कोई आसान बात थोड़ी है किसी का दिमाग साफ कर देना है कि नहीं। इट्स अ मिरेकल अगर देखा जाए तो। और प्रभुपाद जी ने मिरेकल किया इस प्रकार से, किसी आदमी को जो अनादिकाल से भौतिक संसार में जकड़ा हुआ है उसको यहां से उठा करके उसके बद्ध जीवन के सारे पास पूरे संस्कारों को निकाल करके उसे शुद्ध भक्त बना देना और गोलक वृंदावन में भेज देना, अभी आश्चर्य नहीं तो और क्या है बताइए, है कि नहीं। तो ये प्रभुपाद कह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। क्या है ये? प्रभुपाद लिख रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वी कैन अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। हिंदी में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा से जानते हैं कि हम सब कुछ संभव है। और प्रभुपाद एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि 5 वर्ष क्यों, कृष्ण चाहे तो 5 दिन में अपने नाम का प्रचार पूरा कर सकते हैं, कृष्ण के लिए क्या संभव है, है कि नहीं। तो प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये साइंस किसको समझ आ सकती है? केवल उस व्यक्ति को जिसके अंदर दो चीजें हैं, दो क्वालिफिकेशन है, पहली क्या है श्रद्धा और दूसरा क्या है भक्ति। ओनली दो प्रभा लिख रहे हैं, दोज हु हैव फेथ इन एंड डिवोशन टू कृष्णा कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स हैपन सो वंडरफुली बाय द ग्रेस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। इसमें श्रद्धा नहीं है और भक्ति नहीं है, उसको लगेगा कि हो क्या रहा है, उसको लगेगा कि इस्कॉन भी एक मुंडेन ऑर्गेनाइजेशन है जो नए मेंबर्स रिक्रूट कर रही है। जैसे कंपनीज जाती हैं कॉलेजेस के अंदर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के अंदर और रिक्रूटमेंट करती हैं, उनको ऐसे लगेगा ये भी इनका रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना। ऑफकोर्स वी वॉन्ट एज मेनी पीपल टू टेक एम्प्लॉयमेंट इन इस्कॉन, बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पे, कभी खत्म नहीं होने वाली लाइक दैट। तो लोगों को लगता है इस पास एक मंडेन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में है नहीं। जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर भक्ति है, केवल उसी को यह आश्चर्य लगेगा कि यह कृष्ण की कृपा से हो रहा है। बाकियों को लगेगा ये लोग पता नहीं क्या टॉनिक पिलाते हैं। कल ही हमारे पास एक भक्त आए थे, तो उनकी माता जी साथ में आई थी, तो बोलती पहले तो उन्होंने बोला मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, वो पहले कुछ दिन पहले भी आए थे, उनका बेटा भक्त है माता जी भक्त नहीं है, बोले मंदिर में भक्त आएंगे तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा मंदिर की हवा से। उन्होंने ऐसा बोला, पहली बार जब आए थे तो बोला देवानंद हमारे साथ थे, तो वो कह रहे थे कि मंदिर में जाएंगे। मैंने बोला मंदिर में चलिए दर्शन कीजिए वहां बैठ के बात करते हैं, बोले नहीं मंदिर में घुसेंगे तो हमें मालूम है हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो फिर हमारी वार्तालाप हुई, बाद में बाहर ही बैठ के हुआ, बाद में फिर वो मंदिर आए फाइनली और फिर कल दोबारा आए वैसे करके, तो हमने बोला प्रसाद ले लीजिए। तो उनके बेटे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो प्रसाद लेते ही थे हमेशा, और माता जी पहले बेटे को देखने लगी फिर हमारी ओर देखने लगी, और मैं समझ तो गया कि क्या कहना चाहती है अभी। और मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कहा बिना खाए मत जाना, आप प्रसाद खिला दो आपकी माता जी भी चेंज हो जाएगी चिंता मत करो। तो उनके बेटे भी कहते खत्म हो गया होगा अभी जल्दी हो रही है कुछ कुछ ऐसे करके, मैंने कहा चिंता मत करो देरी भी हो रहा है डांट खा लेना लेकिन प्रसाद भी खा लो साथ साथ। तो उनकी माता जी बस हिचकी जा रही थी, बोले अभी यहाँ का खाएंगे तो हमारा मन भी जो है दूषित हो जाएगा। तो सब लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ इस्कॉन में प्रसाद में कुछ मिला देते हैं लोग। तो, कई लोग कहते हैं ये वास्तविक घटना है, हमें मिला करे आपके प्रसाद में कुछ आप डाल देते हो। और ऐसे ही हुआ रशिया में प्रीचिंग जब हो रहा था, तो एक पुस्तक है सॉल्टेड ब्रेड, तो वहां पे पढ़ रहे थे जब ये भक्त लोग जेल के अंदर थे, लेबर कैंप के अंदर थे और साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के अंदर थे, तो वहां पे बाहर बहुत सारे भक्तों ने प्रोटेस्ट किया। तो एक जो है लेडी 40-45 साल की उम्र की कोई लेडी थी और उनको भेजा उनको टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने बातचीत किया, उन्होंने देखा सब नॉर्मल लोग हैं ये, तो इनको ऐसे ही लोग केजीबी ने केस किया हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप क्या कर सकते हो, तो एक दिन जेल के अंदर को छूट दी कि आप यहां पे जो है प्रसादम कुकिंग करो। उन्होंने लिस्ट दे दी ये आइटम बनाना चाहिए हमको कुकिंग करने के लिए, और वहां पे भक्त थे इसके सन्यास प्रभु, तो वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुक थे। तो जेल के अंदर पूरा कुकिंग अरेंजमेंट किया गया, उन्होंने बोला वी आर नॉर्मल पीपल वांट टू शो, और उन्होंने 4-5 प्रकार के जो नमकीन आइटम, 3 प्रकार के स्वीट्स, 2 प्रकार के जूस बनाए, और पूरे जेल की जो बदबू आ करती थी वो सब चली गई, और वहां पे जो है प्रसादम की खुशबू आने लगी बिल्कुल। और उसके बाद जो प्रसाद सब जेल वालों को बांटा गया ऐसा करके। तो और वहां पे बता रहे हैं उस जेल के अंदर बैठते थे और ऐसा था जेल के ऊपर जेल, उसके ऊपर ऐसे सेल्स थे कई सारे, और कहते थे एक सेल में कीर्तन करते थे, नीचे वाले भी कीर्तन करते थे उसके ऊपर वाले भी कीर्तन करते थे। और उन्होंने एक ड्राइंग बनाया जेल के अंदर 5 तत्व का, और बोला वो 5 तत्व का ड्राइंग बनाया, कहते मेरे को ड्राइंग आता नहीं था पहले, बट समहाउ महाप्रभु की कृपा से ही मेड अ ड्राइंग आई थिंक 5 तत्व ओनली। और वो ऑल्टर बनाया उन्होंने अपना ऐसा करके, और वो ऑल्टर फिर हर सेल के से एक एक जेल से दूसरे जेल में पास होने लगा, और 2 हफ्ते बाद घूमते हुए आया वो ऑल्टर उनके पास, और जेल में कितने कैदी जो है जप करने लगे, और जब वो कीर्तन करते थे तो सारे कैदी कीर्तन करते थे ऐसे करके, है ना। तो पॉइंट है कि यही चैतन्य महाप्रभु कृपा से सब कुछ जो है प्रैक्टिकल है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु अदीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा में अगर कोई लॉजिक लगाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो एक ही निष्कर्ष पे आएगा, क्या है कि महापुरुष मर्सी इज बियॉन्ड ऑल लॉजिक, है ना, कि महाप्रभु की जो कृपा है कब किस पे कृपा करेंगे वी डोंट नो, ऐसे अभी कुछ दिन पहले श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव आविर्भाव दिवस था, तो उनके शिष्य थे रसिक मुरारी। तो ये रसिकानंद ठाकुर जो थे उड़ीसा में प्रचार कर रहे थे, और निश्चित रूप से ये संसार का नियम है, कोई भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा तो संसार समाज उसका द्वेष करेगा ही करेगा, लोग दुश्मन होंगे। तो ऐसे ही वहां के एक राजा थे, और वो भी जो है शायद मुस्लिम राजा थे या क्या थे, तो वो भी रसिकानंद प्रभु की ख्याति से द्वेष करने लगे, और उन्होंने बोला हम तब मानेंगे, इसका टेस्ट लेते हैं। तो रसिकानंद प्रभु को बुलाया गया, और वहां पे क्या किया, एक पागल हाथी को छोड़ा, और पागल हाथी वह चार्जिंग है रसिकानंद ठाकुर उनको मारने के लिए, और रसिकानंद ठाकुर आराम से खड़े हुए थे और भगवान के नाम को बस जप कर रहे थे, और वो हाथी आया वहां पे, पागल हाथी था प्रैक्टिकली इंटॉक्सिकेटेड, और आया और क्या करने लगा, वो आके रसिकानंद ठाकुर को प्रणाम करने लगा, शांति से खड़ा हो गया प्रणाम करने लगा, और रसिकानंद ठाकुर ने उसके कान में जाके क्या बोला, हाँ बोलो कृष्णा, है ना। और वो हाथी क्या करने लगा, नृत्य करने लगा, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, सोचिए। और उसको एक हाथी को रसिकानंद ठाकुर ने दीक्षा दी, उसका नाम क्या दिया, गोपाल, है ना। आप बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चों के लिए स्टोरी बुक भी है, पहले तो आया करती रही, पता बीबीटी में होगी कि नहीं होगी, रसिकानंद और पागल हाथी ऐसे करके रसिकानंद मैड एलिफेंट। तो जो है अभी आश्चर्य है, और ये भी आश्चर्य खत्म नहीं हुआ, इसके बाद वो हाथी क्या करता था, अपने गुरु के लिए रोज जो है मधुकरी करने जाता था, आप सोचिए। और हाथी था ऐसा नहीं खुद खाता था सब कुछ, क्या करता था, लाके सब कुछ अपने सूर्य भर के अपने गुरु को देता था, आप सोचिए। जस्ट इमेजिन, दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ये जो मूवमेंट है ये पूरी कृपा का मूवमेंट है। लेकिन प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, इस कृपा को एक्सेस करने का पासवर्ड क्या है, आपके पास बैंक में 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है लेकिन आपके पास पासबुक नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, एटीएम का वो भूल गए, क्या होता है, पिन आप भूल गए। देन आजकल ऐसे ही होता है, लोगों के बहुत सारे पासवर्ड होते हैं, एक पूरा फाइल होता है पासवर्ड का फाइल, क्योंकि 10 अकाउंट होते हैं, कोई कंपनी का अकाउंट, यहां का पासवर्ड, है ना। और बहुत बड़ी ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं तो, और बहुत टाइम लगता है उन्हें ऐसे करने में। तो प्रभुपाद यहां पासवर्ड बता रहे हैं, वो क्या है, यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक कृष्ण के निष्ठावान भक्त होंगे तो हम कृष्ण सदैव उनके साथ होंगे, क्योंकि कृष्ण जो है क्या है, स्वभाव से अपने भक्तों पर अत्यंत दयालुता अनुकूल रहते हैं। कृष्ण नेचर इज टू बी मर्सीफुल एंड फेवरेबल एंड काइंड टू हिज डिवोटीज, दिस इज नेचर, बट नेसेसिटी रिक्वायर्ड इज वी हैव टू बी डिवोटी। और इंग्लिश में लिख रहे हैं वी हैव टू बी सिंसियर डिवोटीज, और सिंसियरिटी की प्रभुपाद क्या आगे डिफाइन कर रहे हैं, किस प्रकार से सिंसियरिटी की परिभाषा प्रभुपाद बता रहे हैं। उदाहरण तो दिया अर्जुन का, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल श्योरली इमर्ज विक्टोरियस इफ वी बट रिमेन सिंसियर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड सर्व द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द प्रेडिसेसर्स आचार्यस द 6 गोस्वामीज एंड द अदर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। यदि हम सब भक्त गंभीर रहेंगे, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगम के बताए गए पद चिन्हों के अनुसार जो है भगवान की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की विजय होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे करके। बट ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज हमें सिंसियर होना पड़ेगा, और पूर्ववर्ती आचार्यों के, अर्थात हमारे लिए विशेषकर हमारे फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्त स्वामी श्री प्रभुपाद जी के दिए गए एक एक नियम का सख्ती से पालन करना पड़ेगा जो उन्होंने हमें दिया है। मॉर्निंग प्रोग्राम, केवल प्रसाद लेना, 16 माला का ध्यान तो जप करना, लेकिन इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक ही और इंस्ट्रक्शन दिया जिसे प्रभुपाद बल दे रहे हैं, जो वार्निंग दे रहे हैं हमको, कॉशन कि हमारे लिए कहां डेंजर है। द कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटीज मस्ट ऑलवेज डिजायर टू रिमेन इन द सोसाइटी ऑफ डिवोटीज, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्म जन्म है यही अभिलाष। दे कैनॉट गो आउटसाइड द कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी और मूवमेंट, विद इन द सोसाइटी वी मस्ट ट्राई टू सर्व द प्रेडिसेसर्स बाय प्रीचिंग चैतन्य महाप्रभुस कल्ट एंड स्प्रेडिंग हिज नेम एंड फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक हिदायत है, प्रभुपाद कह रहे हैं आप सब इस इस्कॉन संस्था में रह करके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का पूर्ववर्ती आचार्यों के दिए गए प्रोसेस के अनुसार पालन कीजिए, और ये सबसे बड़ा टेस्ट है। इस्कॉन में रहना बहुत बड़ी तपस्या है, किसी भी संघ में रहना यह आसान काम नहीं है, बिकॉज संघ मतलब संघ मंदिर या इस्कॉन संस्था इस बिल्डिंग से नहीं बनी है, कि हाँ 41/77 इज इस्कॉन, पीपल नो इस्कॉन, वो इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे विग्रह हैं, इसलिए भी नहीं जानते, ठीक है, कृष्ण वर्णन अधिकारमन है, उससे अधिक जानते हैं क्यों, भक्तों के कारण। कोई भी संघ बनता है तो भक्तों के कारण बनता है ऐसे करके, और भक्तों के संघ में रहना ये बिल्कुल भगवान ने हमको चेकमेट कर दिया। आप देखो लोग चेस खेलते होंगे तो उसमें चेकमेट होता है, क्यों, भक्तों के संघ के बाहर रह के भक्ति में प्रगति पॉसिबल नहीं है, है ना, और भक्तों के संघ में रह के प्रगति करना वही बहुत बड़ी तपस्या है कि नहीं, वो इतना आसान नहीं है। डिफरेंट डिवोटीज, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स लाइक दैट, और निश्चित रूप से मतभेद तो होगा ही। और प्रभुपाद यही कहते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मीन्स दैट मायावाद इज नॉनसेंस। अगर हमारे धारणाओं के अंदर मतभेद है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी एक धारणा नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम सब एक नहीं है, हम अलग अलग हैं, हम सब इंडिविजुअल हैं, और यही कृष्ण गीता में बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते वी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बट नॉट डिफरेंस ऑफ पर्पस। हमारा लक्ष्य एक ही है, श्रीला प्रभुपाद जी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके सानिध्य में रह करके भक्ति करना और सेवा करना, ये गोल हमारा कॉमन है। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, धारणाएं अलग अलग हो सकती है, और यही हमें सीखना है, अलग अलग भक्तों की इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करना, भक्त सनेवास, क्योंकि ये ऑप्शन तो है ही नहीं कि हम इस्कॉन के बाहर रह करके कुछ सेवा करें, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रभुपाद कह रहे हैं दैट वोंट बी प्लीजिंग टू आचार्यस। लेकिन थोड़ा एनालाइज किया जाए, प्रभुपाद जी ने क्या किया, क्या वो अपने गुरु के आंदोलन में रहे कि नहीं रहे, भक्तिवेदांत सरस्वती ने क्या एस्टैब्लिश किया था, गौड़िया मठ, लेकिन क्या प्रभुपाद जी गौड़िया मठ में रह के प्रचार किया कि नहीं किया, तो प्रभुपाद जी गौड़िया मठ से बाहर चले गए ना अल्टीमेटली। तो अगर मान लीजिए हम भी इस्कॉन में कल मतभेद देखें तो क्या करना चाहिए, बाहर जाके हम एक और इस्कॉन खोल सकते हैं, इज इट नॉट। अगर शिला प्रभुपाद हैं तो कर सकते हैं, यदि आप प्रभुपाद जी के स्तर पे हैं तो हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन अगर गौड़िया मठ में मतभेद हो सकते हैं, सन्यासियों के बीच में ये लड़ाई हो सकती है कि मैं इस कमरे में रहूंगा उस कमरे में रहूंगा, तो फिर कलयुग तो और आगे ही बढ़ा है, कम तो नहीं हुआ है कि नहीं। अगर हम सोचे इस्कॉन में रह के हमको शांति होनी चाहिए तो बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर है कि नहीं। शांति और भक्ति तो एक साथ चलती नहीं, शांत हो गए तो भक्ति थोड़ी करेंगे है कि नहीं। और भक्ति में प्रगति करने के लिए जब तक चुनौती नहीं आने वाली जीवन के अंदर, तो प्रगति भी नहीं आने वाली, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट चैलेंज, यू नो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। आराम से भक्ति में प्रगति करेंगे ये तो असंभव बात है, या तो आराम करोगे या भक्ति में प्रगति करोगे, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती है कि नहीं। तो अब अगर प्रभुपाद जी के जीवन के अंदर देखें, प्रभुपाद जी ने पूरा प्रयास किया अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी में अंतर क्या है, प्रभुपाद जी के अंदर गौड़िया मठ के अंदर वो प्रचार की भावना ही खत्म हो चुकी थी, ये सबसे बड़ी बात है कि वो प्रचार की जो सेल्फलेस भावना है दैट वॉज नॉट इन गौड़िया मठ। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया अपने गुरु भाइयों के साथ मिलने के लिए, और यहां तक ऐसा भी हुआ प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई को लिखा कि मेरे पास अच्छे धोती कुर्ता नहीं है, दो धोती कुर्ता आप मेरे को दे दीजिए, और उन्होंने बोला कि यहां पे ब्रह्मचारी या जो मठ के सदस्य हैं ये आपस में झगड़ा करते हैं, और मुझे अनुमति दो कि मैं इसका संचालन करता हूं, इस प्रकार से प्रभुपाद रोड समथिंग। और उनका लेटर आया कि जहां तक धोती कुर्ता का सवाल है आप ले लीजिए, और मेरे शिष्य को, पर्टिकुलर शिष्य को मैनेज करने दीजिए। और प्रभुपाद ने उस गौड़ी मठ को, दिल्ली में था या आई डोंट नो किस जगह पे गौड़िया मठ था, केशव जी गौड़िया मठ और समथिंग लाइक दैट कहीं पर था, तो प्रभुपाद उसको छोड़ के चले गए फाइनली। तो प्रभुपाद ने प्रयास तो पूरा किया, और प्रभुपाद अपने व्यास पूजा ऑफरिंग के अंदर लिख रहे हैं, अपने सब गुरु भाइयों से अपील कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन था भक्तम ठाकुर का, उस मिशन को पूरा करना चाहिए हमें, ना कि अपने अपने मठ को मैनेज करना चाहिए और इस पर लड़ाई करनी चाहिए कौन मठाधीश बनेगा है कि नहीं। हम सबको संगठित होकर प्रचार करना चाहिए, लेकिन उनके गुरु भाई राजी नहीं थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आगे पालन किया और फिर अकेले ही प्रचार करना आरंभ किया, वेस्टर्न कंट्री में गए। और अभी मैं सोचता था बस 5-7 मिनट के बाद में वी विल सिंग द सॉन्ग की प्रभुपाद जी की शक्ति का राज क्या था, प्रभुपाद जी सफलता का इस्कॉन संस्था में हम सब जो बैठे हैं इसका वास्तविक रहस्य क्या है। और फिर प्रभुपाद जी ने जो है अकेले गए, सफलता पूरी प्रयास करी, और जब प्रभुपाद मायापुर के अंदर आए, हालांकि प्रभुपाद ने मना किया अपने शिष्यों को कि आप गौड़िया मठ मेरे गुरु भाइयों का संग मत करो, क्योंकि जब उन्होंने वृंदावन और मायापुर जाना शुरू किया और प्रभुपाद जी गुरु भाई संग करना शुरू किया तो प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों ने प्रभुपाद जी के शिष्यों को ही पल्यूट करना शुरू कर दिया। ऐसा अभी मैं इस्कॉन में देखते हैं कुछ लोग जो इस्कॉन के बाहर चले जाते हैं वो ही प्रचार करते हैं। किसको प्रचार करते हैं? इस्कॉन रहने वाले भक्तों को। और प्रचार नहीं करते, दुष्प्रचार करते हैं कि इस्कॉन में ये है, कुछ कम फिलॉसफी बताई जा रही है, हम हायर फिलॉसफी बताएंगे, ये होगा वो होगा इस प्रकार से। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी के जो नए शिष्य थे कुछ वो भी दिग्भ्रमित हो रहे थे और वो शिष्य प्रभुपाद जी की निंदा करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक बार मायापुर में उन सबको जो है प्रसाद से बुलाया और प्रभुपाद ने उन्हें बोला कि गुरु महाराज की कृपा से, भक्तन ठाकुर की कृपा से सब कुछ है, मेरे पास धन है, शिष्य है। बोले मैं आपको शिष्य भी दूंगा, धन दूंगा, आप सब मिलकर क्या करो, पूरे विश्व में प्रचार करने में मेरी सहायता करो। उनमें से एक शिष्य, एक जो उनके गुरु भाई थे वो तो उनको उल्टा ही बोलने लगे और बाकी सब ने कुछ जवाब नहीं दिया। सब इंटरेस्टेड थे केवल अपने अपने मठ को मेंटेन करने के अंदर। प्रॉपर सोचिए, इतना उनका विशाल हृदय था। बोला आपसे प्रचार करो, भगवान की कृपा सब कुछ है और जिस मंदिर को बनाने में आपने 20-20 साल लगा दिए हैं, मैं एक साल के अंदर आपको मंदिर बना के देता हूं। एक साल के अंदर मैं आपको अपने शिष्य देता हूं और क्या बोलते हैं धन देता हूं, सब कुछ देता हूं और आपको पूरा मंदिर बना के मैं देता हूं, आप केवल प्रचार करो। लेकिन उनमें से कोई राजी नहीं था, है ना। तो प्रभुपाद वांटेड टू ब्रिंग हिज ऑल गॉड ब्रदर्स टुगेदर। ये भक्तिन ठाकुर की भी इच्छा थी कि सब संगठित होकर जो है, सही पूर्ववर्ती आचार्य की जो ये इच्छा है कि सब संगठित होकर प्रचार करें। ऐसे करके भक्तिन ठाकुर की, भक्तिन ठाकुर की इच्छा थी कि क्यों कलौ संगे शक्ति है। और दूसरी बात, कलयुग के अंदर लोग यही देखते हैं कितने लोग यहां से जुड़े हुए हैं, जितने अधिक लोग हैं उतने अधिक लोगों को लगता है हाँ ये संस्था ठीक है कि नहीं। और प्रभुपाद जी ने भी यही ट्रिक इस्तेमाल करी, क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज से अपने पश्चिमी देशों भक्तों को लेकर के आए, जो व्हाइट बॉडी डिवोटीज थे, सफेद, प्रभुपाद जी लिखते नाचते सफेद हाथी, डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स। और जब वो यहां के नृत्य करते थे तो भारतीय लोगों में प्रभाव पड़ा। जब वो धोती कुर्ता पहनते थे और लीलामृत के अंदर वर्णन आता है, जब लोग सूरत गए, सूरत के अंदर प्रचार जब करने गए तो पूरा का पूरा सूरत शहर जो है, क्योंकि गुजरात तो वैसे भी एक समावेश है, कृष्णा कॉन्शियस सिटी नगरी है, वहां पे सब बाल गोपाल की ज्यादा पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की, तो पूरा सूरत शहर जो है स्वागत कर रहा था प्रभुपाद जी उनके शिष्यों का। और सड़क की दोनों ओर सब लोग खड़े हुए थे, फूल लेके, बैनर्स लेके, झंडे लेके, सब लेके उनका स्वागत करने के लिए। और सब भक्त नृत्य कर रहे थे और जब भक्त आए तो उनको देख के आश्चर्य, अभी तक जो वेस्टर्न कंट्रीज में जब वो नृत्य संकीर्तन करते थे लोग उन पे, पुलिस आती थी, लोग सड़े हुए अंडे टमाटर फेंकते थे, उनको गालियां निकालते थे, कोई मृदंग फोड़ते थे, उन पे आक्रमण करते थे, और ये भारत तो विशेष जगह जहां पे लोग ऐसा स्वागत कर रहे हैं, तो हर जगह प्रभुपाद जी को जो है इस प्रकार से स्वागत मिला। ये भी एक चमत्कार था। लेकिन तो प्रभुपाद जी ने फिर अकेले इसको कर दिखाया। लेकिन प्रभुपाद जी आगे जाने से पहले प्रभुपाद ने क्या बोला, हाउ मच यू लव मी विल बी सीन बाय हाउ मच यू कॉपरेट। क्यों? क्योंकि एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन है, कि भगवान का भजन करने के लिए अकेले हमारे पास शक्ति नहीं है। जितना अधिक हम भक्तों के संग में रहेंगे उतनी हमारे अंदर आचरण करने की और प्रचार करने की शक्ति है। अब इस्कॉन में रहने के भी दो तरीके हो सकते हैं। इस्कॉन भी एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे, इस्कॉन इज इन थ्री लेयर्स, ईच सटलर देन द अदर वन। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल इस्कॉन, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इस्कॉन है, हमें लगता है यहाँ जीबीसी है, टेंपल प्रेसिडेंट्स हैं, टेंपल कमांडर्स हैं, पूरा स्ट्रक्चर है, ट्रेजरर्स हैं, ये एचओडीज हैं, इस प्रकार से ये लीगल, एक लीगल इस्कॉन, ऑर्गेनाइजेशनल इस्कॉन, वही बहुत महत्वपूर्ण है संघ के लिए। और इस्कॉन के नेक्स्ट क्या है, उसकी नेक्स्ट सटल लेयर क्या है, सूक्ष्म स्तर क्या है, परफेक्ट प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो ये कृष्णा का प्रोसेस है, ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना, रोज मंगल आरती करना, गुरु पूजा करना, प्रसाद ग्रहण करना, डीटी वर्शिप करना, पुस्तक वितरण करना, इज अ परफेक्ट प्रोसेस। जिससे निश्चित रूप से हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल इस्कॉन के अंदर कुछ कमी जरूर हो सकती है और होगी भी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी, कुछ गलतियां, कुछ मतभेद, कुछ स्कैंडल्स हमेशा होंगे, लेकिन जो प्रोसेस है एक स्ट्रॉन्ग, ये परफेक्ट है ऐसे करके। तो एक भक्त को अपनी विजन के अंदर जाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल इस्कॉन को देखते हुए, उसमें रहते हुए, अपनी लॉयल्टी को साबित करते हुए इस परफेक्ट प्रोसेस को पालन करना पड़ेगा। और इसका पालन करते हुए इस्कॉन का थर्ड लेयर वो क्या है, मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कृपा को वो देख पाएंगे, जो चमत्कार हो रहा है वास्तविकता के अंदर। एक चमत्कार हम आपको अपने मंदिर का बताते हैं। हमारे मंदिर के एक भक्त हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी एक दिन, उनके मन में ऐसा विचार आया, फुल टाइम डिवोटी है वो, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बाद में पता भी लग जाएगा जब मैं बोलूंगा। तो उन्होंने भगवान से ऐसा, उनके मन में विचार आया कि अब एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि अब मैं आज खाली बैठा हूं, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन चले जाता हूं। तो उन्होंने अपना बैग उठाया, किताबें भरी, और एक्चुअली उनका किसी से झगड़ा हो गया था, एक भक्त दूसरे भक्त थोड़ा झगड़ा से मन मुटाव हो गया, तो उनको गुस्सा आ गया, बोले आज मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं, बस मंदिर में रहूंगा, बाहर जाके प्रचार करता हूं। तो ठीक है, वो अपना पूरा बैग भर के ले गए, और बैग बहुत भारी था, थोड़ी दूर निकले यहां से, पैदल ही निकल गए थे, अकेले थे और पैदल निकल गए, उनके कंधे दर्द करने लगे, इतना भारी बैग है। तो भगवान से बोला, मैं ये मंदिर तो नहीं जाऊंगा बैग खाली किए बिना, तो आप भी कुछ मदद करो। तो पहली गाड़ी आई, उन्होंने उसको बुक दिखाई, तो उन्होंने बोला कि बुक तो है, ऐसे जो भी बोला उन्होंने, तो इन्होंने बोला नहीं आप ही के लिए बुक्स में लेके आया हूं। तो उन्होंने बोला अच्छा कितना देना है, बोले जो आपकी श्रद्धा हो, पर ये एक सेट तो कंपलसरी है। उन्होंने 500 रुपये उनको दे दिए और 17 पता नहीं कितनी किताबें ले ली उनसे। आगे सुनिए, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो इनको लगा भगवान आप तो सही में कृपा हो गया, रेसिप्रोकेशन। तो फिर और थोड़ी दूर बाद जाकर उस गाड़ी वाले ने फिर रोका उन्हें, तो इन्होंने ऐसा हुआ कुछ, गाड़ी वाले को उन्होंने रोका था तो कुछ देर आगे जाके रुका, और हाँ ऐसा हुआ था एक्चुअली, उन्होंने गाड़ी को रोका तो गाड़ी वाले थोड़ी दूर जाके रुक गया, तो उसने बोला कि आइए प्रभु जी बैठिए, कहां जाना है मैं छोड़ देता हूं। वो भक्त नहीं था कोई था, ऐसे करके कह रहे मैंने आपके लिए गाड़ी रोकी है, और उसी व्यक्ति ने किताब ले ली थी, गाड़ी के अंदर बैठे थे प्रचार किया, इन भक्त ने उनका कार्ड लिया, बाद में कल्टीवेट करूंगा ऐसे करके इनको, और इन्होंने इनको जहां छोड़ना था तो भगवान ने गाड़ी अरेंज कर दी, वहां पर छोड़ दिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे तो लोग प्रैक्टिकली अपना जिस घर में जाते थे वहीं लोग किताबें ले रहे थे ऐसे करके, जो उनको मिलता था वही आदमी कह रहा था अरे ये तो हम ढूंढ रहे थे ऐसे करके, और 5000 रुपए की किताबें डिस्ट्रीब्यूट करके मंदिर वापस आ गए शाम तक। तो फिर अब क्योंकि थोड़ा मन मुटाव था तो उन्होंने किसी को बताया तो नहीं खास, एक दो भक्तों को भी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो अब अगले दिन एक तो उन्होंने आए भगवान से बहुत धन्यवाद दिया कि भगवान आपने बहुत कृपा करी आज, और पूरा बैग भी खाली हो गया, 5000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो अरे अगले दिन उनको कुछ और सेवा थी उनकी, तो इन्होंने कहा भगवान अगर आप कृपा करो तो मैं रोज 5000 रुपए की पुस्तक वितरण करूंगा। ठीक है, प्रार्थना करके गए। अगले दिन सुबह इनको सुबह सुबह प्रैक्टिकली भागवतम के दौरान बड़े मंदिर जाना था, और पूरा दिन वहां पे उनकी क्लास थी, तो ये आए दर्शनार्थी के दौरान दर्शन किया, और बहुत दुखी मन से बस अब प्रणाम करके निकल रहे थे विग्रहों के दर्शन करके, भगवान अब आपके ऊपर है करना चाहो तो। यहां मंदिर से निकल रहे थे, कोई माता जी आई, बोल रही मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डोनेशन देना चाहती हूं। तो ये आंखें बिल्कुल चमक आ गई, तो उन्होंने दीजिए माता जी, तो उन्होंने कितना लक्ष्मी दिया इन्हें, पूरे 5000 रुपए। ये थे हमारे केशव और राम प्रभु। तो दिस का चमत्कार ऐसा है, कृष्णा हियर्स। और उसके बाद उन्होंने कहा कितनी बारी उन्होंने जो भगवान ने उनको रेसिप्रोकेट किया है कि जब भी क्राइसिस में उन्होंने प्रार्थना की कृष्णा रेसिप्रोकेटेड ऐसे करके, कि कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ करके इनके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाया करता था ऐसे करके। सो ऑल वी नीड इज वी हैव टू बी सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा इज देयर, लॉर्ड चैतन्य इज देयर टू गिव अस ऑल मर्सी। भगवान जो है सबको कृपा देने के लिए खड़े हुए हैं। और इसके आगे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, संघ में रहते हुए, इस्कॉन सोसाइटी में रहते हुए हमें परेशान नहीं होना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट हमें इंस्टीट्यूशनल इस्कॉन में रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम दिखेगा हमें। ऑर्गेनाइजेशनल इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, उस माहौल में रहते हुए आध्यात्मिक विषय के लिए रहना है, आध्यात्मिक पर्पस के लिए रहना है, क्योंकि यहां पे परफेक्ट प्रोसेस है, ये हमें मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि हम तो भक्ति में आए थे, बोलो प्रभु जी मंदिर में भी शांति नहीं है, मंदिर में भी ये है, अरे भाई शांति का तो प्रचार किया ही नहीं था हमने कभी, है कि नहीं। शांति का प्रचार तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया, बाकी सब ने किया, जितने सब ने किया, प्रभुपाद जी ने तो एक बार भी शांति का प्रचार नहीं किया, प्रभुपाद जी ने तो ये प्रचार किया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुविधम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मृच्छति। रियल फॉर्मूला इस भगवान को जान लो, वो सबके सर्वलोक महेश्वर है, सभी यज्ञों के क्या है भोक्तारम, यज्ञों के ही इज द इंजॉयर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, प्रोप्राइटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड वेल विशर ऑफ सभी जीवों के हितैषी हैं। ये तीन बात जब जान लोगे संसार में पीस अपने आप आ जाएगा, नहीं जानोगे तो हमने शांति का तो किया नहीं फॉर्मूला। हम तो प्रचार ये कर रहे हैं भगवान आपके मित्र हैं, सारे यज्ञों करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, और सबके प्रोप्राइटर कौन है, भगवान है, इसलिए हमने प्रचार किया, शांति तो अपने आप आएगी। तो अगर कोई सोचे भाई कि इस्कॉन के अंदर भी आके शांति नहीं है, या भक्तों के समाज में थोड़ा मनमुटाव रहता है और कुछ कुछ है ये है वो है, तो हमें वी शुड नॉट बी सेंटिमेंटल कि हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस्कॉन के अंदर। आप एक्सपेक्ट करो, अरे भाई भागवतम के पहले स्कंद से आखिरी स्कंद तक भक्तों की जीवनी लिख लो, ऐसा कौन सा भक्त है जिसका जिसने आराम से भक्ति करी है। परीक्षित महाराज गर्भ के अंदर समस्या, प्रहलाद महाराज उनको समस्या, पांडवों को समस्या, प्रभुपाद जी को समस्या, जीसस क्राइस्ट को समस्या, नारद मुनि को समस्या, कौन सा ऐसा भक्त है जिसको समस्या उसके जीवन में नहीं आई, ऐसा करके यानी भक्ति अनुसार ठाकुर को समस्या, कौन सा भक्त है जो समस्या नहीं आई, तो हमें कैसे आ जाएगी समस्या। हम कुछ सेवा करने का प्रयास करेंगे और भगवान सब ठीक कर देना, ऐसा संभव कैसे है। अब प्रयास करेंगे तो समस्या दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, एंड वी शुड रेडी फॉर दिस। इसीलिए भक्त को बहुत व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, इसका एक एक्सट्रीम हो जाता है, सब जाते हैं भगवान के पास, विपदा संतोता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कुंती महानी प्रार्थना करते हैं भगवान, तो आप कठिनाइयां जाके याद कर सकें। जब कठिनाइयां आती हैं तो भूल जाते हैं भगवान को, है कि नहीं। तो हम कुंती महानी स्तर पर हैं, ठीक, कठिनाइयां मत मांगो, लेकिन कठिनाइयां अपने आप ही आ जाएंगी हमारे शुद्धिकरण के लिए, है कि नहीं। मांगने की जरूरत नहीं है, और इतनी कठिनाई आ जाएगी जो हमारी झेलने की शक्ति से ज्यादा है। ऐसा है, बस भगवान सहन शक्ति मांगो, भगवान सहन करने की शक्ति दीजिए कि ये जो परफेक्ट प्रोसेस है ये मेरे से ना छूटे। और ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। अपेरेंटली हमें लग सकता है कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आंदोलन को छोड़ दिया, पर नहीं, वो स्पिरिट थी प्रभुपाद के अंदर, प्रभुपाद जी ने उनके आंदोलन को हृदय के अंदर रखा हुआ था और एज इट इज उसको इस्कॉन के रूप में अपनाया, ऐसे करके, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हम सब संघ के अंदर रह के, चाहे मनमुटाव हो, चाहे यहां पर एक दूसरे द्वेष हो, नफरत हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी होएगा क्योंकि भौतिक जगत के अंदर हैं हम, स्टिल वी हैव टू रिमेन इन एसोसिएशन, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और एसोसिएशन में केवल रहना नहीं है, यहां पर यहां रह के इसके जो मिशन है जिसके लिए इसकी स्थापना हुई है उसको पूरा करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा करके। किसी का कोई एक प्रश्न नहीं तो हम प्रभुपाद जी के एक भजन को आधा गाएंगे। यस सर, तो माइक्रोफोन
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, मेरा प्रश्न तो नहीं है आपसे, आज प्रभुपाद जी की बहुत प्रशंसा की तो मेरे को भी एक बात याद आ गई। तो एक बार एक किसान को हीरे की थैली मिल गई, एक किसान के बेटे को हीरे की थैली मिल गई, उसको उसकी कीमत का निर्माण होता है, उसने खट्टे मीठे फल तोड़ने में उसको लगा दिया, खट्टे मीठे फल तोड़ने में। पास से एक चोरी गुजरा, उसने बच्चे के हाथ में पत्थर का टुकड़ा देखा चमकता हुआ, उसने बोला तुम क्या कर रहे हो भाई, बोला हमने तो फल तोड़ रहा हूं, अरे बोला ये हीरा मुझे दे दे, तेरे को ये बाघ का बाघ लाभ कर दूंगा, आगे भी दूंगा इधर भी दूंगा। ऐसी प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आए, उसने कहा तुम मत उड़ाओ जीवन को, बहुत उड़ा दिया तुमने, अब ये जीवन मुझे दे दे, मैं तेरे को बाल आभार कर दूंगा, यहां भी आगे भी।
शीला प्रभुपाद की सच बात है ये, लेकिन प्रॉब्लम है हम सबके पास हीरा है लेकिन हम फल तोड़ने में लग रहे हैं, ये दिक्कत है, वी टेक फॉर ग्रांटेड, ऐसा करके। क्योंकि हम अब जिस सिटी में जाते हैं मंदिर है, जहां जाते हैं भक्त मिल जाते हैं, मेरा तो ये अनुभव है जिस रेलवे स्टेशन में चले गए वहां कोई ना कोई भक्त मिल गया, किसी ट्रेन में चले गए आप साउथ की जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं वहां भक्त मिल गया, किधर भी जा रहे हो ट्रेन में कहीं ना कहीं बस के अंदर, हम गए एक ऐसे स्टेशन के अंदर जो स्टेशन पे बहुत कम ट्रेन आती थी, ऐसी जगह उतरे थे हम, हरिद्वार से एक स्टेशन पहले है लश्कर, हम वहां खड़े थे और परेशान हो रहे थे धूप के अंदर, ट्रेन मिले और हम टिकट क्या करें, बस से जाएं ट्रेन से जाएं, वहां पे एक भक्त रुके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोले आप इस्कॉन से? बोले हाँ इस्कॉन से। बोले इस्कॉन कहाँ से? बोले दिल्ली से। अच्छा कहाँ जा रहे हो? हम लोग रुड़की जा रहे हैं। आप कहाँ से? बोले मैं इस्कॉन लुधियाना से हूँ, लुधियाना में रथ यात्रा की समिति में वहाँ पे सेवा करते हैं हम, लुधियाना में रथ यात्रा निकालते हैं ये वो। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हो? लुधियाना जा रहे हैं अभी, सहारनपुर से। हरे कृष्ण। वो ऐसा बीहड़ सा जंगल सी जगह है प्रैक्टिकली, और वहां पे हमें दोपहर के समय भक्त मिल रहे हैं। आप सोचिए ऐसे करके सुबह 5 बजे हम प्राणगिरी रेलवे स्टेशन पे थे, वहां पे ट्रेन का वेट कर रहे थे। एक ट्रेन आई वहां से सामने से, और एसी कोच हमारे सामने रुके, ऐसे एक आदमी वहां खड़ा था। ठीक है, थोड़ी देर बाद हमारे पास आया। बोले हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोले आप इस्कॉन से हो ना? हाँ, मैं जब कर रहा था सुबह का टाइम था। बोले मैं भी जम्मू कश्मीर में आर्मी में आदमी ऐसा कुछ वहां पे करता हूं, और मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूं, और फलाने मंदिर से इन भक्तों से, इन महाराज से जुड़ा हुआ हूं। आप सोचिए ये प्रॉपर चमत्कार है। हम अपने पास देखते हैं सब जगह तो वी टेक फॉर ग्रांटेड, तो हमें लगता है कि सब कुछ सही है हमारे पास में। इसीलिए हर भक्त को प्रचार के लिए जाना चाहिए, ऐसी ऐसी जगहों में, ऐसे ऐसे गांव में जाना चाहिए जहां पर प्रचार नहीं हुआ हुआ, तब जहां भक्त ना हो। एक हफ्ता, 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीना जब रहेंगे भक्तों के बिना, तो हमें भक्तों की वैल्यू समझ आ जाएगी और प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो क्या किया था उन्होंने ऐसा करके? और प्रभुपाद जी के शिष्य जब प्रभुपाद जी ग्लोरीफाई करते हैं लंदन में अपने 3 गृह शिष्यों को, उन्होंने कैसे ये केंद्रों की स्थापना की है। दिल्ली के अंदर राधा पार्षद जो तेजस प्रभु ने और 2-4 भक्तों ने जो एस्टेब्लिश किया है, फॉरन बॉडी डिवोटीज, हिंदी भाषा नहीं आती उनको, वो भक्तों ने कैसे केंद्रों की स्थापना की है इस प्रकार से करके। और यहाँ पे पहले सुरभि महाराज और पंजाबी बाग में रहते थे, उनसे पूछे क्या क्या संघर्ष था यहाँ पे उनके साथ में। ये पुराने भक्त भी, उनको मालूम है कि पुराने जब बिल्डिंग तोड़ा गया था तो यहाँ बाथरूम टॉयलेट नहीं थे प्रैक्टिकली। संघर्ष किसे बोलते हैं? आज तो सब फैसिलिटी हमारे पास में, और हम सब फैसिलिटी के लिए परेशान हो रहे हों, तो हमारा जीवन बिल्कुल वैसे हो जाता है, हीरो से फल तोड़ने में लगे हुए हैं बस ऐसा करके। बिल्कुल सच बात है ये, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम इस्कॉन के जो मिशन को डाइल्यूट ना करें। तो ये प्रभुपाद जी का भजन है जो प्रभुपाद जी जलदूत में जाते हुए लिखा था। तो ये डिस्ट्रीब्यूट सॉन्ग बुक्स और है सॉन्ग बुक्स, इसका मैं पहले बस 4 कोट्स हैं। यू कैन गिव दिस बुक्स, दिस इज कृष्ण के चरण कमल में प्रार्थना। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस, गिव इट। तो इसके 4 का मैं खाली अनुवाद पढ़ता हूं, देन विल सिंग। हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूं कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी। कृष्ण तबा पुण्य हवे भाई, यदि और सॉन्ग बुक शब्द निकाल सकते हैं तो मैं, कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। शची पुत्र चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण सेवा अतुलनीय है। वे ऐसे महान सदगुरु हैं जो सारे विश्व भर के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं। उनकी बलवती इच्छा से भगवान गौरांग का नाम पाश्चात्य जगत के समस्त देशों में फैलेगा। पृथ्वी के समस्त नगरों व गांवों में, समुद्रों, नदियों आदि सभी में रहने वाले जीव कृष्ण का नाम लेंगे। जस्ट इमेजिन, इसे बोलते हैं वैष्णव का हृदय, जल में रहने वाले लोग सोच रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। जब सब पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगी तो वैष्णवों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है, तथापि मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं तो अति दीन महीन हूं, अतएव नाथ अब मैं आपकी तुम्हारी कृपा की दीक्षा मांगता हूं जिससे मैं योग्य बन सकूं, क्योंकि आप तो सभी में सर्वाधिक प्रवीण हो। तो ये एक प्रचारक को जानना चाहिए कि वी आर नॉट प्रीचर्स, वी आर सिंपली इन्फॉर्मर्स। हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु और भगवान का बता रहे हैं, और हम में से जो लोग प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं करेंगे, जिनका ना इच्छा है। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए अधिक से अधिक अपने इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करना, क्योंकि उनको लोग नहीं जानते हैं। वहां से कलयुग के इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु हैं, लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वो समझ जाए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और ये युगधर्म हरिनाम संकीर्तन है। बंद करता हूं मैं।